नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। श्रीलंका के निवेश संवर्धन बोर्ड ने भारत के अडानी समूह की दो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं देश के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में लगाने की मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं में कुल $44.2 करोड़ का निवेश किया जाएगा। मन्नार के पवन ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 250 मेगावाट और पुनरिन स्थित संयंत्र 100 मेगावाट क्षमता का होगा। एक विज्ञप्ति में बताया गया, श्रीलंका निवेश बोर्ड ने मन्नार और पुनरिन में दो पवन ऊर्जा संयंत्रों की $44.2 करोड़ के कुल निवेश के साथ स्थापना करने के लिए भारत की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को मंजूरी पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया कि इन संयंत्रों को 2 साल में शुरू करने की योजना है। इन्हें राष्ट्रीय ग्रिड में 2025 में जोड़ा जाएगा। नई परियोजना रोजगार के 1500 से 2000 अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2023-24 का आम बजट पिछले 8 से 9 वर्षों की तरह ही कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है और तिलहन तथा खाद्य तेलों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि और सहकारिता क्षेत्रों के संबंधित पक्षों के साथ बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का कृषि बजट कई गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा, साल 2014 में हमारे सत्ता में आने से पहले कृषि क्षेत्र का बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम था। आज देश का कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। मोदी ने कहा, हाल के सभी बजट को गांव, गरीब और किसान का बजट कहा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र आजादी के बाद लंबे समय तक संकट में रहा और इसके चलते देश को खाद्य सुरक्षा के लिए विदेश के ऊपर निर्भर होना पड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि RBI जैसे प्रमुख पदों पर थोड़े समय के लिए काम कर चुके कुछ विदेशी विशेषज्ञों की भारत के बारे में की गई टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि भारत आज अपनी कोशिशों के बल पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कुछ लोग भारत के आर्थिक उदय के बारे में गलत धारणा फैला रहे हैं। धनखड़ ने कहा, हम किसी को भी इस देश के पसीने से मिली उपलब्धियों को कम करने, कलंकित करने और अपमानित करने की अनुमति नहीं दे सकते। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की एक टिप्पणी के संदर्भ में उन्होंने कहा, कुछ लोग RBI जैसे प्रमुख पदों पर यहाँ आते हैं और यहाँ काम करते हैं। वे विदेश से आए और पद संभाला। जब कार्यकाल खत्म हो गया और नवीकरण नहीं किया गया तो वे चले गए। इसके बाद वे कहते हैं कि भारत भोजन संकट का सामना कर सकता है। सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना सबसे ज्यादा परिवर्तनशील डिजिटल नवोन्मेष है, जो भारत समेत कई देशों में वृद्धि को आगे बढ़ाने वाले कारक के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना पर बृहस्पतिवार को अलग से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि भारत समेत कई देशों के अनुभवों के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि DPI सबसे ज्यादा परिवर्तनशील नवाचारों में से एक है। वित्त मंत्रालय के शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार संगोष्ठी के दौरान हुई चर्चा में प्रभावी राजकाज के साथ मजबूत और समावेशी वृद्धि की राह में DPI की क्षमता का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां, विशेषकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शुक्रवार को बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की G20 बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता, भरोसा और वृद्धि प्रदान करना समूह के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की एक बैठक है। मोदी ने कहा, वैश्विक वित्त एवं अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व आप ऐसे समय में कर रहे हैं जब दुनिया गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है। COVID-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो झटका दिया वह एक सदी में एक बार होने वाला घटनाक्रम है। इसके बाद के प्रभावों से अनेक देश, विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अब भी उबर नहीं पाई हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को 3.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें जनता पर किसी नए कर का बोझ नहीं डाला गया। गुजरात के वित्त मंत्री कानू देसाई ने यहां विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का ये पहला बजट है। इस बजट में कई योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें से कुछ विवादे हैं जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किए थे। इनमें पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य मां अमृतम योजना के तहत वार्षिक बीमा सीमा को दोगुना करके 10 लाख रुपए करना, उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को हर साल 2-2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शामिल है। वित्त मंत्री देसाई ने कहा कि साल 2023-24 के लिए अनुमान 916.87 करोड़ रुपए का अधिशेष दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई और ये पिछले वर्ष की तुलना में 23.38% अधिक है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।